अय्यूब अध्याय 33, अध्याय 33 पद 1 से लेकर 6 तक। तभी हे अय्यूब, एलीहू ने कहा, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेंगी। जो ज्ञान में रखता हूं उसे खराई के साथ कहूंगा। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रचकर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूं, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूं। एलीहू सीमा को पार कर रहा है। अय्यूब ने कहा कि उसके और परमेश्वर के मध्य कोई मध्यस्थ होता तो अच्छा होता। एलीहू उसका मध्यस्थ बन रहा है। यहां मैं आगे नहीं कहूंगा क्योंकि एलीहू भटक रहा है। अध्याय 33 पद 6 से लेकर 8 तक। मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूं, सुन, तुझे मेरे डर के मारे घबराना ना पड़ेगा और ना तू मेरे बोझ से दबेगा। निस्संदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं कि अय्यूब ने अपने आप को निरपराध और निष्कलंक कहा था। अध्याय 33 पद 9। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूं और मुझ में अधर्म नहीं है। और उसने अय्यूब के मुंह से ये भी सुना। अध्याय 33 पद 10 से लेकर 13 तक। देख, वो मुझसे झगड़ने के धाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वो मेरे दोनों पांवों को खाट में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की देखभाल करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूं, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है, तू उससे क्यों झगड़ता है? क्योंकि वो अपनी किसी बात का लेखा नहीं देता। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को आपसे क्षमा मांगना पड़े, उसे किसी बात की सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर कुमार है और हम मिट्टी हैं। मिट्टी को अधिकार नहीं कि वो कुमार से पूछे कि उसने उसे वो रूप क्यों दिया। मैं तो मिट्टी का ढेर हूं, मेरे जीवन पर कुमार का प्रभुत्व है। वो जो चाहे मुझे बना सकता है, वो चाहे तो मुझे आदर का पात्र बना सकता है, वो चाहे तो मुझे अनादर का पात्र बना सकता है। वो मुझे पेय पदार्थ का प्याला बनाए या कूड़ा धान, ये उसकी इच्छा है। मेरे जीवन पर उसका पूरा अधिकार है, उसे मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं कितना भी कहता रहूं, परमेश्वर मुझे बता, परमेश्वर मुझे कारण समझा, परंतु आवश्यक नहीं कि वो उत्तर दे। क्या आप सोचते हैं कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो उससे कहूंगा, परमेश्वर तुझे ध्यान है कि 1980 में मेरे साथ एक घटना घटी थी, तूने ऐसा क्यों किया था? कदापि नहीं। जब मैं वहां जाऊंगा तो इतना अधिक प्रसन्न हो जाऊंगा और वहां परमेश्वर ने मेरे लिए जो कुछ भी रखा है उसमें इतना मगन हो जाऊंगा कि मुझे परमेश्वर से ये व्यर्थ के प्रश्न पूछने का समय ही नहीं होगा कि मेरे साथ पृथ्वी पर ये सब क्यों हुआ। मैं तो वहां अनंत राज्य के उत्साह में इतना आनंदित हो जाऊंगा कि मुझे इन सांसारिक बातों का लेश मात्र भी स्मरण न होगा। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसी योजना बना रहे हो, परंतु मैं नहीं। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं स्वर्ग में इन बातों पर समय नष्ट करूं। मैं तो इस माया चक्र से निकलकर प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में और उसके राज्य में खुशी से रहूंगा। अतः वो घोषणा करता है। अध्याय 33 पद 14 से लेकर 18 तक। क्योंकि परमेश्वर तो एक वरन दो बार बोलता है, परंतु लोग उसका चित नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं व बिछौने पर सोते समय, तब वो मनुष्यों के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। अब परमेश्वर कहता है, वो दो बार कहता है। परमेश्वर कैसे बातें करता है? वो सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और अनेक रूपों में बातें करता है। मेरे विचार में तो हमें अपने मन को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए खुला रखना चाहिए। परमेश्वर तो अनेक बार हमसे बातें करता है, परंतु हम उसकी आवाज को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा नाम पुकार कर जोर से बोलेगा, परंतु परमेश्वर ऐसे आकर्षक और प्राकृतिक तरीके से बोलता है कि हम प्रायः समझ नहीं पाते कि वो परमेश्वर है जो हमसे बातें कर रहा है। परमेश्वर स्वप्न में, दर्शन में, स्वर्ग दूतों के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से, हमारे मित्रों के माध्यम से और कई विभिन्न तरीकों से हमसे बातें कर सकता है। आप परमेश्वर की विधियों को सीमित नहीं कर सकते हैं। एलिया कहता है, देखिए पहला राजा 19 का 11 और 13 पद, वहां आग थी परंतु परमेश्वर उसमें नहीं था, बड़ी प्रचंड आंधी था परंतु परमेश्वर उसमें भी नहीं था, तब भूकंप आया तो उसमें भी वो नहीं था। इन सब के बाद एक छोटी सी आवाज आई और परमेश्वर उस आवाज में था। ये एक विशेष अनुभव था, परंतु मूसा के साथ परमेश्वर ने आग में से बातें की थी। परमेश्वर ने बंदीगृह के अधिकारी को भूकंप के माध्यम से ये बातें की थी। परमेश्वर नाना प्रकार के तरीकों से बातें करता है। सत्य तो यह है कि परमेश्वर बातें करता है, परंतु क्या मैं सुनता हूं? क्या मैं परमेश्वर के साथ मेल में हूं? यदि मैं आपसे कहूं कि आपके कमरे में अनेक चित्र हैं, अनेक वाणियां हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? यहां मधुर संगीत है, रॉक संगीत है और अनेक ध्वनियां हैं। यदि आप किसी रेडियो को चलाते हैं तो उसमें विभिन्न आवाजों और गाने तथा संगीत आप सुनते हैं, परंतु आपको उनके साथ मेल करना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर बातें करता रहता है, परंतु आवश्यकता तो इस बात की है कि हम अपनी आत्मा और मन का उसके साथ मेल करें। मेरे विचार में तो इस कार्य में हमें अपनी इच्छा से कहना होगा, परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे दिखा। इसके साथ ही साथ परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे विचार में तो हम परमेश्वर से सीधे प्रश्न नहीं करते हैं, इसलिए सीधे उत्तर नहीं पाते हैं। हम परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए ध्यान नहीं लगाते हैं। परमेश्वर एक बार कहता है, दूसरी बार कहता है, वो दर्शन में कहता है, वो कान खोल देता है, वो हमारे उद्देश्यों से हमें लौटा लाता है कि हम गड्ढे में ना गिर जाए। अध्याय 33 पद 19 से लेकर 21 तक, उसे ताड़ना भी होती है कि वो अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है। मनुष्य की हालत ऐसी हो जाती है और उसकी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहां तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है, उसका मांस ऐसे सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता, और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती है। एलीहू आयुब की अवस्था का वर्णन करते हुए कहता है, तेरा दुख महान है, तेरी हड्डियां निकल आई है, तेरा स्वास्थ्य घिर चुका है, निश्चय ही परमेश्वर तुझे कुछ समझाना चाहता है। अध्याय 33 पद 22 से लेकर 28 तक। निदान वो कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नाश करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिछवाई स्वर्गदूत मिले जो हजार में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वो उस पर अनुग्रह करके कहता है कि उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती मिली है, तब उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाएगी, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आएंगे, वो परमेश्वर से विनती करेगा और वो उससे प्रसन्न होगा, वो आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और परमेश्वर मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। वो मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया, उसने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से बचाया है। वो कहता है, यदि तू अंगीकार करे तो। अध्याय 33 पद 28 से लेकर 33 तक। उसने मेरे प्राण कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। देख, ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर पुरुष के साथ दो बार क्या वरन तीन बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वो जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। हे आयुब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह, मैं और बोलूंगा। यदि तुझे बात कहनी हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूं। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह, मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। ये युवक आयुब से कहता है, यदि तुझे कुछ कहना है तो कह, नहीं तो मुझे कहने दे, क्योंकि मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूं। वो जो कहता है वो वास्तव में सही है, और परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है कि वो हमें गड्ढे में गिरने से बचा ले। परमेश्वर की संतान होने के कारण आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि परमेश्वर आपको बुराई करके निकल जाने नहीं देगा। आप देखेंगे कि सब तो बुरा करके बच जाते हैं। इसका कारण है कि वे परमेश्वर की संतान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है, आपका रक्षक है, वो आपको दुराचार और अनाचार करके बचने नहीं देगा। इस कारण वो अपनी संतान को गड्ढे में गिरने से बचाने के लिए उनकी ताड़ना करता है, वो आपको रोकता है। आप संभवतः उस उपदेश को भूल गए हैं जो आपको पुत्रों की नाई दिया गया है, इब्रानियों 12 अध्याय 5 पद। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। यदि आपको झिड़का नहीं गया तो आप अपने पिता की संतान नहीं है। यदि आप बुराई करके और छल करके बच जाते हैं तो ये बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि यदि आप परमेश्वर की संतान है तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, आप अवश्य प्रताड़ित किए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको फंदे से और पतन से बचाना चाहता है।